ओम शांति। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान। जैसे ही बाबा की महिमा हम गाते हैं, बाबा सामने, बाबा ने कहा था, जो बाप के घर में खुश नहीं वो दुनिया में कहीं भी खुश नहीं रह सकेगा। इसलिए सुख, शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, जो आत्मा की 7 क्वालिटीज, वो हमें उदय रखनी है, इमर्ज रखनी है बाबा बुद्धिवानों के साथ, बुद्धिवान के साथ अपनी बुद्धि जोड़ करके। जैसे मोबाइल को हम लोग चार्जिंग पर रखते हैं, इसी प्रकार जब बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा संग संग चलते हैं। बाबा सिर्फ अपने स्वधर्म में स्थित रहे, स्वमान में स्थित रहे, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मेरी फोटो वीडियो बना रहे हैं, फिर बाबा मुझे ही द्वापर युग में दिखाएंगे। इसलिए अपने कर्मों पर बहुत ध्यान जाता है, और कर्म का बीज होता है संकल्प। अपने संकल्पों पर भी हम पूरा अटेंशन रखें। कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, मधुबन में है, सेंटर पर है, कहीं पर भी हम बैठे हैं, लेकिन बाबा की याद में मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो बाबा ने हमको सेलेक्ट किया है। इंसान किसी इंसान को सेलेक्ट करता है फिर भी धोखा खा जाएगा। फैमिली देखेगा, बैकग्राउंड देखेगा, एजुकेशन देखेगा, उनकी हर चीज देखेंगे, इनका बिजनेस क्या है, इनका अपना मकान है या नहीं, लेकिन फिर भी धोखा खा जाएगा। लेकिन परमात्मा, उसकी सेलेक्शन कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। वो हमारे जन्म मरण को, आदि मध्य अंत को सब जानता है। इसलिए उसको कल्याणकारी शिव कहा गया है। वो सदा ही शिव है, सदा ही कल्याणकारी है। तो बाबा ने मुझे अपना बनाया, वह मेरा भाग्य, वह बाबा, वह ड्रामा, वह ब्राह्मण परिवार। तो जब हम वह वह के गीत गाते हैं तो कोई ऐसी परिस्थिति आने वाली होती है तो वो भी सूली से कांटा हो जाती है कि ये तो मन से बाबा के साथ लगे रहते हैं, हर समय बाबा के गीत गाते रहते हैं, तो माया माना ही कमी कमजोरी, माया फिर अपने आप किनारा होने लग जाती है, किनारा करने लग जाती है। तो बाबा ने हमें अपना बनाया, बाबा ने हमारे 35 अवगुण नहीं देखे। बाहर में बोर्ड पर पढ़ रही थी गुण, बाबा ने हमारे 35 अवगुण नहीं देखे, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया सर्व गुण संपन्न बनना, सर्व आत्माओं से अच्छी बातें सीखना, सर्व से क्वालिटीज गुणग्राही बन करके लेते जाना। बाबा ने हमारा एक गुण देखा जो आप में बचपन से होगा, 84वें अंतिम जन्म में। जैसे चंद्रमा, फुल चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, फुल मून, सर्व गुण संपन्न दिखाई देता है, 16 कला संपूर्ण। लेकिन वही चंद्रमा धीरे 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 देखिए क्या हो जाता है, अमावस्या की एक लकीर वो बच जाती है, सारा खत्म नहीं होता। पूरे सृष्टि चक्र में जन्म मरण में आते हुए अंतिम जन्म में एक लकीर, एक गुण, एक विशेषता हम सब के अंदर बचपन से रह गई। जैसे किसी में शांति, प्रेम, किसी में दया करुणा। और हमारे बड़े दादी जी मेडिटेशन हॉल में जब क्लास करा रहे होते थे तो दादी कहती थी कि इस दादी में अंतिम जन्म में सत्यता रही, सत्यता का गुण, सत्य बाप को पसंद आ गया और मुझे इसी गुण से बाबा ने संपूर्ण बनाना है। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। जैसे ओम शांति भवन अभी बन रहा था तब हम देखते थे जैसे ही बना और यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुई, धर्म सम्मेलन हुआ, सर्वधर्म सम्मेलन, राजाओं महाराजाओं का कार्यक्रम हुआ, तो कितने अखबार वाले टेलीविजन वाले आए होते थे, कितने प्रकार के प्रश्न उत्तर चल रहे होते थे और हम साक्षी होकर के देख सुन रहे होते थे हमारे दादी जी कैसे सत्यता से बाबा की बातें स्पष्ट कर रही होती थी। क्योंकि सभी चले जाते थे और थोड़ा सा स्पेस होता था जहां पर उनके क्वेश्चन आंसर चल रहे होते थे तो हमें वहीं बैठना होता था कि देखो दादी जी उनके उत्तर दे रही हैं। तो दादी उनको भी कहती थी भाई किसने जीवन में क्रोध नहीं किया वो हाथ खड़ा करे, तो सब चुप हो जाते थे। तो दादी उनको भी अपना एग्जाम्पल देते थे कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए श्री बाबा ने मुझे अपना बना लिया, मुझे इस सीट पर बिठाया है। तो मैं मेडिटेशन हॉल में अभी बैठ करके सोच रही थी दादी की विशेषताएं क्या थी। अगस्त मास, कल से दादी जी का मास शुरू हो रहा है, तो हम भी अपनी विशेषता को जरूर देखें, एकांत में बैठकर, शांति में बैठकर, सच्चे मन से कि बाबा ने मुझे उस विशेषता के आधार से चुना है। नरक को स्वर्ग बनाना, पतित को पावन बनाना, गिरे को उठाना, बिगड़ी को सवार देना, ये बाप का काम है, सर्वशक्तिवान का, जो गुप्त रीति से 90 वर्षों से चल रहा है ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। हम सब बाबा के बच्चे इसमें मददगार हैं, हम सब अपनी एक छोटी उंगली का सहयोग दे रहे हैं। हर एक की उंगली में देखो 3 कोट होते हैं, तन मन धन, मैं आपका हूं, दूसरा है मन वचन कर्म से मैं सदा पवित्र रहूंगा रहूंगी, और तीसरा कोट हमें सिखाता है समय संकल्प और श्वास। बाबा के नाम मैंने लिख दिए, अब ये व्यर्थ के कार्य में, चाहे मेरे हाथ में मोबाइल है, कोई मुझे देख थोड़ी रहा है मैं कमरे में क्या कर रहा हूं क्या कर रही हूं, लेकिन कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, ये तो हम पहले भी गाते थे। तो ये आंखें कोई खराब चीजें तो नहीं देख रही, पहले मैं अपने मन बुद्धि को पॉजिटिव कर रही हूं, मुरली पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, यथा योग यथा शक्ति मैं सेवा भी करता हूँ करती हूँ, फिर मोबाइल पकड़ा और किए किराए पर पानी फेर दिया, सारा जितना मैंने पुण्य जमा किया। बाबा कहते देखना मना नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए जरूरी है और जितना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि अभी दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है जो 30 साल पहले थी, 20 साल पहले भी थी, 40 साल पहले भी थी। माताएं मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, जब आप लोग स्कूल कॉलेज में थे तब आपके दिमाग की स्थिति क्या होती थी, दिमाग की मेमोरी पावर क्या होती थी। तो हम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे, ये हमारी एक उंगली का, छोटी उंगली का सहयोग रहेगा कि समय संकल्प और ये सारी शक्तियां प्रभु आपके कार्य में लगेंगी। प्रॉमिस है, हिस्ट्री हॉल में बैठे हो, सबसे पहले हॉल जहां ब्रह्मा बाबा ने जिस हॉल को बनाया है, दृढ़ता से संकल्प मन में करोगे तथास्तु का वरदान मिल जाएगा। बाबा ने कहा था हिम्मत का कदम बढ़ाना, 1000 भुजाधारी बाप आपके साथ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों की दूर की नजर तेज हो गई है। क्या अर्थ है? दूसरे के अवगुण जल्दी देख लेते हैं और खुद के नहीं दिखाई देते। नजदीक की कमजोर नहीं, दूर की तेज है तो नजदीक की कमजोर हो गई है। फिर बाबा ने उसी मुरली में स्पष्ट किया था, जिस रंग का चश्मा पहनोगे, चाहे वो ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, और कौन सा होता है, ब्लैक होता है, रेड, रेड भी होता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पहना, पर मैं देख तो रही होती हूँ, है ना, दो तीन कलर में होते हैं। तो बाबा ने मुरली में मिसाल दिया था, जिस कलर का चश्मा पहनोगे, तो ये वाइट साड़ी किस कलर में दिखाई दे, उसी कलर में। तो किसी के अंदर अवगुण है, किसी के अंदर गुण है, तो हमें देखने का नजरिया ठीक रखना होगा। दिखाई तो देगा, अभी आपने जितनी भी क्लासेस सुनी है उसके एग्जाम्पल भी आपको याद होंगे, वो अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें उसका आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप सामने लाना है कि ये आत्मा जब परम धाम से आई थी कैसी आई थी। जब ये आत्मा सतयुग में थी, फर्स्ट जन्म में, मान लीजिए कोई आत्मा द्वापर युग की है, भक्ति भावना वाली है, तो ये भी जब उतरी थी तो इसकी सतोगुणी अवस्था क्या थी। आप देखेंगे धीरे धीरे समर्थ संकल्प करने की आपको आदत पड़ती जाएगी, जिस पर बाबा ने कहा था कि अगर गंदे पानी की बाल्टी है, भरी हुई है, आप उसके ऊपर तेज पानी, फ्रेश पानी का नल खुला छोड़ दो, टाइम लगेगा, लेकिन वो गंदा पानी बाहर चला जाएगा और धीरे धीरे स्वच्छ पानी वो बाल्टी में भर जाएगा। तो ये छोटी सी आत्मा की कहानी बाबा कितने एग्जाम्पल देकर के हमको समझा रहे हैं, समझ आ जाना चाहिए। कोई एक बार आपको समझा रहा है, घरों में भी देख लो, आप बच्चे को एक बार समझा रहे हो, या ड्राइवर को, या मेड को, या दुकान पे अपने सर्वेंट को, या अपने कोई मुनीम को, कोई अकाउंटेंट को, एक बार, फिर आपने दो बार उसको बोला, अब तीसरी बार क्या होगा। बाबा 90 वर्षों से समझा रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको 90 रुपए दिए, आपने मुझे 3 रुपए वापिस कर दिए, आप 3 साल से ज्ञान में हो, बाबा 90 साल से समझा रहे हैं। आपको मैंने 90 रुपए दिए, आपने मुझे 3 रुपए वापिस किए, का दीदी हिसाब बराबर, मैं कहूंगी नहीं। इसी प्रकार हमें लास्ट सो फास्ट जाना है, 24 घंटे हम सबके पास है, चाहे वो ज्ञान में 20 साल से है, 10 साल से है, 5 साल से है, 3 साल से है, हमें 90 वर्ष को कैसे कवर करेंगे, आप खुद सोचिए। हम लेट हो गए हैं, अभी हाथ खड़े करवाए थे कि जिन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को नहीं देखा, 50-60% ने नहीं देखा है। तो बाबा कहते लास्ट सो फास्ट, फास्ट के लिए फास्ट रखना पड़ेगा ना आपको, बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना और बुरा ना करना। स्कूल लाइफ में तो हम 3 बंदर देखते थे, बाबा ने 2 और ऐड कर दिए, सोचना और करना, बुरा ना सोचो ना बुरा करो, 5 हो गए ना। माना हम रोज बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दवाई तो जा रही है छोटी सी आत्मा में, दवाई जा रही है रोज, इंजेक्शन भी लग रहे हैं, लेकिन परहेज भी तो करो, वो दवाई असर करेगी क्या। जैसे एक माता को मैं कहती थी, खूब खांसी होती थी उसको मुरली क्लास में, थोड़ा सा इशारा दिया फिर अपने मुंह में गोली डाल लेती थी, फिर थोड़ी देर में देखो तो कहती थी, दीदी मेरे से खट्टी चीजों का परहेज नहीं होता। मैंने कहा दवाई भी असर नहीं करेगी, आप खाते रहो दवाई। परहेज ही सबसे बड़ी दवा है। सब जगह सबको मालूम है, सब जगह लिखा होता है। तो अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, 90 वर्ष में बाबा ने जो जो दिया सबको, साकार बाबा ने 33 इयर्स में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, लगभग 50 वर्ष दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों से मिलन मनाया, शक्तियां दी, और 2017 में बाबा ने कहा अब समाप्ति वर्ष मनाओ। तब भी बाबा के बच्चे जो थोड़ा अलबेलेपन में थे ध्यान नहीं दिया, बाबा ने 2017 में कह दिया था। तो जब बाबा कह रहे थे डायमंड हॉल में, हम मुरली सुन रहे थे, तो क्योंकि मैं बचपन से भक्ति मार्ग में बहुत इन्वॉल्व थी पेरेंट्स के साथ, तो मुझे एकदम वो सीन सामने आ गया महाभारत काल का, जब अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि आप रथ से उतरे तो मैं उतर के जाऊंगा, और कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि भक्ति में कृष्ण को ही भगवान माना गया है ना, हाईएस्ट, कृष्ण कहो विष्णु कहो, है शिव बाबा के सारे कर्तव्यों के यादगार। तो अर्जुन उनको कह रहे हैं कि आप भगवान उतरिए तो मैं अंदर जाऊंगा उतर के, और कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे नहीं अर्जुन, मैं अगर उतरा तो ये रथ धू धू करके जल उठेगा। तो जब बाबा डायमंड हॉल में कह रहे थे 2017 में, तो मुझे बाबा की वो बात से भक्ति का वो दृष्टांत सामने आ रहा था कि अब लास्ट का टाइम आ चुका है, लास्ट का टाइम। मुरली हम सुनते ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार मुरली, फिर मुरली के ऊपर संडे की मुरली पे लिखा होता है रिवीजन, अब है रियलाइजेशन। हम मधुबन भट्टी में बैठे हैं, रियल आईज, रियल रियल को महसूस करो, मैं अपने बाप के घर में बैठा हूं, बैठी हूं, और जिसके सिर पर बाप का हाथ हो, घरों में भी देख रहे होते हो ना सब, वो बच्चा कितना निश्चिंत होता है। तो इसलिए मेरा बाप बैठा है, करना सभी ऐसे, कोई बात हो कहना मेरा बाप बैठा है, ऐसे ऐसे बाबा ने डायमंड हॉल में किया था, ऐसे कोई बात आए कहना कोई बात नहीं ना, हो जाएगा ना, पहले भी हुआ था ना, छोड़ो ना इसकी बात को। अब बाबा ने जब ऐसे करके दिखाया कि आपका बाप बैठा है, आप निश्चिंत हो जाओ, तो हमने बाबा से तब प्रॉमिस किया कि हाँ बाबा अभी हम बिल्कुल बेफिकर बादशाह निश्चिंत, कितना भी कारोबार हो लेकिन आप करेंगे, आप बैठे हो, आए ना लिखा हुआ बाप बैठा है, तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, ये लिखा हुआ है। तो ये पक्का पक्का करके बाहर जाना, घोट घोट के पक्का कर लेना कि बाप बैठा है, कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, विघ्न भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और अब तो बड़े बड़े पेपर भी आने हैं, लेकिन बस बाप को पकड़ के रखना, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, हर बात में बाबा आप देखो, बाबा आप कर, सूली से कांटा हो जाएगा। दादी ने कहा था बाबा को स्टेज पर, जब बाबा को भोग खिला रहे होते हैं, बाबा सूली से कांटा हो जाएगा आपने कहा, बाबा कांटा भी ना चुभे, कैसे किया दादी ने, बाबा कांटा भी ना चुभे, तो बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले कि कांटा भी अगर ना चुभे तो पता कैसे चलेगा कि मेरे बुरे कर्म विकर्म मेरे सामने आ रहे, कांटा चुभेगा लेकिन बाप की याद में रहेंगे तो महसूस नहीं होगा। आप देखिए चीफ क्या प्रश्न पूछ रहे और भगवान क्या उत्तर दे रहे, वो भी बंधे हुए हैं ड्रामा के वश, वो समझाएंगे, शक्तियां देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे कि तेरी कर्म गति बलवान है, जैसे गीता में 16वें अध्याय में लिखा गया है, सॉरी 13वें अध्याय में कर्म योग के ऊपर, कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, निष्काम भाव से कर, नेकी कर दरिया में डाल, तेरे कर्म का फल तुझे ही मिलना है, तू जो बीज बोएगा जिस विधि से बोएगा उसी का फल तेरे को ही पूरे चक्र में जन्म मरण में प्राप्त होगा। तो यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी हम उनको देखते हैं, सेंटर्स पर भी देखते हैं, सभी स्थानों पर देखते हैं, तो हम उनके गुण को देख रहे हैं लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं हो जाए। अगर हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं तो फिर हमारा कर्म बंधन का हिसाब किताब उनके साथ द्वापर युग के लिए भी बन जाएगा। और किसी के अवगुण देखते देखते मुझे गुस्सा भी आ रहा है, बैर विरोध भी बढ़ रहा है, क्या इसके अंदर ये है, कहना ही नहीं मानता, इसके अंदर ये नेगेटिविटी है, इतना विस्तार में चले जाते हैं, कितना फालतू बात करते हैं। अब जितना हम उसका नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं, वैर विरोध ईर्ष्या घृणा नफरत द्वेष बढ़ रहा है, कोई ताकत नहीं आ रही आत्मा के अंदर, उसकी ताकत लीक हो रही है, लीकेज हो रही है उसकी पावर, जो उसने अमृत वेले से अपने मोबाइल को चार्ज किया हुआ था वो अभी सब डिस्चार्ज हो रहा है उसका। तो हमें किसी से प्रभावित भी नहीं होना है, उसको प्रभु ने दिया है, प्रभु प्रसाद है, वो अपने आप बांट रहा है, उसको देने दो, उसके अंदर क्वालिटीज हैं, वो औरों को भी लायक बनाएगा, जरूर बनाएगा, उसको भी गुड वाइब्स दो। अब हम देखते हैं कि जब हम बाबा के पास आके बैठे, चाहे यहाँ बैठे वहां बैठे, इधर बैठते हैं जाकर के, जैसे ही बैठे मैंने मोबाइल को जैसे ही वो लीड लगाई कनेक्ट किया, करंट ऑन हो जाता है ना, कि टाइम लगता है ऑन हो जाता है। सिमिलरली हम जैसे ही बाबा के पास बैठे मुझे बाबा सामने खड़ा हुआ दिखाई दे, बैठा हुआ दिखाई दे, बाबा मुझे देख रहा है, एकदम तार से तार जुट जाए तो करंट आ जाता है, शक्ति आ जाती है। मन को हल्का रखना है, एकदम हल्का लाइट, जो अभी एग्जाम्पल हम रुई का सुन रहे थे ना, राई नहीं रुई है, हर बात को पहाड़ नहीं राई भी नहीं रुई के समान फूंक मारो उड़ जाएगी। तो जैसे ही हम तार को तार से जोड़ रहे हैं तो करंट आ जाना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल अपने मन बुद्धि को राजदरबार लगाते थे, कचहरी लगाते थे, हे बुद्धि हे रानी तुम क्यों इधर उधर जा रही हो, हे मन राजा बैठ जाओ मुझे ध्यान करने दो। कभी बाबा अपने कान को चपटी काटते, कभी बाबा अपने को हिलाते कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है। नंबर वन आत्मा ने कितना गहन पुरुषार्थ किया है, एज क्या थी बाबा की आप देखिए तो सही, एज क्या थी, इतना बाबा ने पुरुषार्थ किया कि बच्चे मन को सुमन बनाओ, इसको ईश्वर में बार बार मन को मना लो, मन मना भो, मन को मना लो। ये छोटा बच्चा है कहना मान जाएगा। समर कैंप में भी हम देख रहे होते हैं, अगर बच्चे कहना नहीं मान रहे होते हम कहते हैं आप जाओगे ना बाहर देखना डॉगी बैठा हुआ है, देखो बाहर कितना ट्रैफिक है, भाग के अंदर आ जाते हैं। छोटा बच्चा भी तो कहना मान जाता है ना, जिद करेगा तो अपना ही नुकसान करता है। तो हम भी अपने मन को अमन नहीं कर सकते, दमन नहीं कर सकते, सुमन श्रेष्ठ संकल्प दे सकते हैं। इसलिए कहा गया है समर्थ भोजन आत्मा का भोजन है, व्यर्थ से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। हमें हमेशा समर्थ संकल्प ही करनी है। जैसे दो सगे भाई, छोटा सा एग्जाम्पल है, दो सगे भाई और दोनों में थोड़ी सी किसी बात में तू तू मैं हो गई, तो जो छोटा था वो रेत के पास खड़ा था, सागर के पास रेत होती है, रेत पर वो लिख रहा था आज मेरे भाई ने मुझे इतनी डांट लगा दी, आज मेरे भाई ने मुझे ऐसे किया, चला गया। और जो दूसरा भाई था उसने पत्थर के ऊपर लिखा आज इसने मेरा कहना नहीं माना, आज इसने ये किया। अब आप देखिए जो पहला भाई था उसने रेत पर लिखा था, पानी आया मिटा के चला गया। लेकिन दूसरे ने तो पक्का कर लिया ना, दीदी आपको मालूम नहीं है ये बहन कैसी है। अरे कैसी भी है, बाप की है ना। अब देखो व्हाइट कपड़े में आ गए ना, बैच भी लग गया, मधुबन भी हो गई, बाबा इसको पकड़ेगा। हम शुभ भावना का जल देते रहे इसको, गुड विशेस। मैंने कहा देखो कल ही दो बच्चे आए हुए थे ना, वो कह रहे थे ऐसे साड़ी पकड़ रहे थे, ऐसे छोटे थे। मैंने कहा हाँ जी, कहा हमें माफ कर दो। मैंने कहा पर आपने किया क्या है। कहा बोलो ना, माफ कर दिया। मैंने कहा किया क्या है आपने। कहा हमारे सर ने कहा था, जैनियों में क्षमा दिवस था उस दिन, जैन धर्म में होता है ना माफी का दिन होता है, उस दिन वो माफी का दिन था। हमारे सर ने कहा है कि 10 जनों से माफी मांग के आओ। मैंने कहा कर दिया माफ, और भी कुछ कहना है क्या। तो मैं एकदम सोच में चली गई, मैंने कहा बाबा भी कह रहे हैं ना, बच्चे फॉरगिव एंड फॉरगेट। मन को भारी नहीं करो कि मैंने पत्थर पे लिख दिया जो कभी मिट ही नहीं सकता। नहीं, वो गलतियां नहीं करो, वो भी तो देखो क्षमा दिवस मना रहे हैं, और बाबा हमें माफ नहीं करते क्या। हम बाबा को लिख करके लेटर दे रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, मुरली में उतर आ जाएगा। बाबा की नजरें आप पर हैं, आप कैमरे की निगरानी में हो, आपको याद रहना चाहिए। हम अपने मन को भारी क्यों करें, हम तो डबल लाइट ज्वालामुखी भट्टी में बैठे हैं, बाबा आपके घर बैठे हैं। बाबा इस आत्मा का अपना पार्ट है, इसको मैं फिर भी समझा दूंगी, और मेरी बात नहीं समझ आती तो मैं बड़ों से इसकी बात करा दूंगी, लेकिन गुड विशेष से, सदा गुड विशेष से। वो जैसा बीज जिस विधि से बोएंगे ना आप, बहुत अच्छा मैंने आम का बीज बोया, लेकिन आ गया मैं, वो कीड़ा भी चला गया, पता ही नहीं चला आपको। समय पर फल मिला, सारे कीड़े लगे हुए। ये गलतियां नहीं करना, बाबा ने संदेश में कहा था एक बार, संगम युग बीज बोने का समय चल रहा है। मैंने किया, अगर दीदी मैं ज्ञान में ना चलता ना दीदी, फिर ये हो ही नहीं सकता था। मैंने कहा नहीं, ऐसी नहीं बात हो सकती, आपके बिना भी भगवान अपने सारे कार्य करा लेंगे। अहंकार देखिए, हमारी कोर्स की किताब में 5वीं मंजिल पर दिखाया गया है, और कोई 5वीं मंजिल से गिरता है ना, हड गुड टूट जाते हैं उसके। अहम भाव, अभी क्लास में सुन रहे थे, अहम भाव नहीं रहम भाव सबके प्रति रखो। कभी भी कीड़ा बोना ही नहीं, है ना। बाबा ने कराया, बाबा ने सफल किया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा ने मेरा भाग्य बनाया। हर समय बाबा को सामने ले आओ, बस। नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डालेंगे तो दिखाई देगा ना वो, दरिया में देखो। एक बार मैंने रुमाल डाला, ओ देखो वहां से वहां चला गया। मैंने कहा हाँ, बाबा कहते ना नेकी कर, ओ गंगा का पानी कहाँ ले गया था उसको। तो जो कहावतें बनी हुई हैं, उसका अर्थ भी तो हमें अपने जीवन में लाना है ना। तो बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया है, मन को सुमन करना है, कचहरी जैसे अपने मन की बुद्धि की। मैं अपना रोज शाम को 7:30-8 बजे बाबा को चाट दे देती हूँ, बाबा मैंने सुख दिया, खुशी दी, माफ किया, ये किया। मैं ये नहीं लिखती मैंने दुख नहीं दिया, मैंने क्रोध नहीं किया। नहीं किया क्या, बाबा ने कहा था वो लिखो, मैंने किया क्या। मैंने सुख दिया, शांति से बात की, प्यार से बात की, खुशी दी, कोर्स कराया, उसको ज्ञान रतन बांटे, वो लिखना होता है चार्ट। कि मेरी दृष्टि स्मृति वृत्ति बाबा सब ठीक थी, बाबा 10 में से मेरे नंबर 6 है। हमें बड़े भाई साहब जगदीश भाई साहब समझाते थे रात्रि क्लास में रोज, कि बाबा को रोज चाट दो और 10 में से 6, 6.5 से ऊपर नहीं क्रॉस करना, कहीं अहंकार ही ना जाए। इसी प्रकार जब मुरली सुनते हैं आत्मभिमानी होकर कि बाबा मुझे पढ़ा रहे, तो उस समय भी फर्स्ट वीक, जैसे कल से फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट वीक मैंने मुरली सुनी, मीठे बच्चे, पूरा पॉइंट सुना, प्रश्न, फिर धारणा के, फिर वरदान स्लोगन अव्यक्तिशारे। तो बाबा जुलाई में मेरी परसेंटेज ये थी, 8 घंटे का चार्ट था, 4 घंटे का था, सोल कॉन्शियस में रही, शुभ भावना से मन भरपूर था। बाबा मैंने सार सुना, सबको सम्मान से ओम शांति कहना है। बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा बहुत ऊंची है। हाँ मुझे समझ रहे है, सबसे ऊंची दशा बाबा की बृहस्पति की है, बाबा बीज है। मैंने अपने मार्क्स लिख दिए 10 में से 4, पासिंग मार्क्स में लिखोगे ना 3.5 से ऊपर ही लिखेंगे ना, 4, 4.5। प्रश्न हुआ, सार हुआ, बाबा मेरी धारणा इतनी चल रही है। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है, बाप के कार्य में मदद करनी है, और जो बीत गया है वो ड्रामा कहकर फुल स्टॉप, अपनी परसेंटेज लिख दो ना, कल की क्या थी मेरी, परसों की क्या थी, याद तो हो गया सारे पॉइंट्स। तो अब मैं इतने पानी में हूं। बाबा जब साक्षात्कार कराएगा, बाबा ने कहा था बिगर साक्षात्कार कराए बाप दादा सजा नहीं देंगे, तो उस समय आप नहीं कह सकोगे मुझे पता ही नहीं था मेरे को इतने कम मार्क्स कैसे मिले। तो हमें चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। बाबा की पढ़ाई बहुत ऊंची हम पढ़ रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूं। बहुत ऊंची पढ़ाई है भगवान की। तो ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाले के पेपर छोटे लेगा, छोटे नहीं लेता। बड़ा बाप रोज पढ़ा रहा है। तो मैं अपने स्कूल लाइफ को कई बार सोचती हूँ, क्लास में भी सुनाती हूँ कि जब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम क्लास लेती थी फ्राइडे सैटरडे, एक पीरियड लेती थी, उस समय हम लोग की यूनिफॉर्म कैसी होती थी, शूज कैसे होते थे, बैग में से कॉपी निकल रही है, कवर चढ़ी, स्लिप लगी हुई, और नेल्स कटे हुए, हर चीज A to Z प्रिंसिपल मैम ने क्लास लेनी है। सिमिलरली जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो डिसिप्लिन, नियम, मर्यादाएं, जैसे ही हम बाबा के सेंटर पे आके बैठते हैं तो मेरा स्मृति वृति कृति, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मुझे अपने घर ले आया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस फौरन संकल्प आ जाए, तो आप देखोगे आपको बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। परसेंटेज भी मैंने लिखनी शुरू कर दी फर्स्ट वीक और अपनी लास्ट वीक में भी, कि हाँ बाबा मेरा चार्ट इतना चल रहा है चारों सब्जेक्ट में, मुझे मालूम है कि आप पढ़ा रहे हो और छोटे पेपर बाप नहीं लेगा, इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी बन जाओ बच्चे। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। वो गलतियां नहीं करो, कभी भी नहीं करो, बस मुझे सेल्फ स्टडी, सेल्फ मेडिटेशन, ग्लोब पर सबको साकाश देना है। मेरे को 90 साल का सारा सिलेबस, चलो 1952 से सेवाएं शुरू हुई माउंट आबू से, तो उसके बाद भी मेरे को ज्ञान में तो अभी 10 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं, कितना मुझे कवरेज करना है अंतर्मुखी बन करके, स्वचिंतन कर करके। ईर्षा द्वेष घृणा नफरत लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा एक तरफ, ये बाद में देखेंगे द्वापर युग में, अभी नहीं, अभी वो समय ही नहीं है। अभी तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, अच्छे कर्मों का समय चल रहा है कि कर सकते हो तो बहती गंगा में हाथ धो लो। बने बनाए पर आए हुए हो सब, जो भी हमसे हो सकता है हम अपना समय श्वास शक्तियां बाबा की सेवा में अर्पण करके चल रहे हैं, घर परिवार में रहते हुए भी समर्पित बुद्धि होके चल रहे हैं। जो कहानी भी हम सुन रहे थे ना एकलव्य की कहानी, देखो अर्जुन और एकलव्य, एकलव्य तो भील था, कैसे आगे निकल गया ना अपनी प्रैक्टिस कर करके। बाबा भी कहते हैं जो ग्रस्त में रहते हैं बच्चे कमल पुष्प समान, और जो सेंटर पर रहते हैं मालूम है आपको पुरानों को पता होगा क्योंकि बाप दादा के शब्द थे। बाबा ने कहा था कि जो सेंटर पे समर्पित होकर रहते हैं वो है गुलाब। तो बाबा के टेबल पे गुलाब रखा था ना, बाबा ने ऐसे किया, सारा झड़ गया, सिर्फ वो पुर आ गया ना बीच में। बाबा ने कहा ये है सेंटर पे रहने वाले, ये है बाबा के समर्पित बच्चे गुलाब। खुशबू हो जाती है ना उसमें। और ग्रस्त व्यवहार में जो रहते हैं वो है मेरे बच्चे कमल पुष्प समान। अपनी कर्मेंद्रियों को, आंख कान सभी को पावन बनाने में लगे हुए हैं कि हाँ बाबा ये हमारी आंखें हैं, जबान है, मुख है, कमल की तरह। जैसे एक आश्रम पे हमारे भाई आते हैं तो उसका बचपन से ये पोलियो के कारण से ना पैर काम नहीं करता, तो जब भी हमारे बड़े भाई साहब जगदीश भाई जी उनके साथ बैठते थे तो भाई साहब कहते थे हाँ भाई क्या उल्टे काम किए आपने पिछले जन्मों में, मुरली तो आप भी सुनते हो, पता तो होगा आपको अपने कर्मों का। तो कहता था कि मैंने जरूर इस पैर से किसी को मारा होगा। राइट आंसर, यस और नो? यस। और जिसकी आंख में डिफेक्ट था, बिल्कुल माइनर, 10 में से एक नंबर उसको दिखाई देता आईज में, तो उससे पूछा जाता था भाई क्या पाप किए थे आपने, भाई सब खुद नहीं बोलते थे, उससे पूछते थे, मुरली आप भी सुन रहे हो, कर्मों की गति आपको भी स्पष्ट है। तो क्या कहता था, पिछले जन्मों में खराब दृष्टि से देखा होगा ना। अभी रिसेंटली एक महीना पहले बहुत रिचेस्ट भाई है सेंटर का, तो कुछ काम कर रहे थे घर में, चक्कर आया, बीपी बढ़ा तो गिरे, तो टेबल था सोफे के पास, टेबल की नोक लगी नाक पे, तो नाक की हड्डी पे कुछ फ्रैक्चर आया तो ऑपरेशन। तो मेरे को कहते हैं दीदी अब मैंने नाक से क्या कसूर किया था। अभी की बात है लास्ट मंथ की। मैंने कहा भैया जी जरूर आपने लोक लाजवश कहीं बैच नहीं लगाया होगा, लोक लाजवश कोई बैठे होंगे ना, आप तो पुराने हो 35 साल से तो आते हो, दोनों ही ज्ञान में है 35 सालों से। तो मैंने कहा जरूर कहीं लोक लाज की बात आई होगी ना, लोक लाज माने ना कहीं आई होगी जरूर, तभी तो वो चोट लगी है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था तो मैंने ऐसे बोला कि बाबा कहते हैं हर कर्म का फल जरूर मिलता है, तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और इस पर भी एक छोटा सा मिसाल मैं अभी सोच रही थी कि एक बार महात्मा बुद्ध अपने जो अनन्य शिष्य आनंद के साथ गए हुए थे मार्केट, तो आनंद परेशान हो गया था। कहते हैं महात्मा बुद्ध को इतना टाइम हो गया है घूमते घूमते, कुछ लेना भी है आपको कि नहीं लेना? तो महात्मा बुद्ध ने क्या बोला, कहा मैं देख रहा हूं कि मैं इस चीज के बिना रह सकता हूं, मैं इस चीज के बिना भी रह सकता हूं, मैं इस चीज के बिना भी रह सकता हूं, मैं इसलिए आया था आपके साथ। ये बात हम अपने ऊपर लगाए, कल हम लोग शांतिवन उतर रहे हैं, जो सामान मुझे चाहिए मैंने लिस्ट बनाई हुई है, और जो मेरे साथ होते हैं उनको मालूम है दीदी दूसरी दुकान पे देखती भी नहीं है। चाहे हम लोग दिल्ली में कहीं मार्केट भी जाएं कुछ सामान लेना है तो सीधा उसी की दुकान पर हाथ खड़ा करेंगे जो मेरे साथ होती है। यस, ऐसे होता है, क्या होता है, हमारी लिस्ट बनी होती है, सीधा उसकी शॉप पर गए और जो सामान हमें मधुबन का लेना है जहां भी जाना होता है वो सामान लिया और वापस गाड़ी में बैठे चले आए। तो कहा दीदी वो और मैंने कहा जरूरत ही नहीं थी ना, जब जरूरत होगी फिर देख लेंगे ना, आंखें क्यों थकाएंगे हम, बोलेंगे क्यों, चप्पल मुझे लेनी नहीं मैं क्यों उसकी दुकान पे जाऊंगी, जरूरत नहीं है ना अभी। ये हमने बड़ों से सीखा, ये बड़ों के साथ रह करके सीखा कि जहां पर आपको जाना है, देखो भक्ति में कितनी कहानियां बनी हुई हैं कि एक महात्मा बुद्ध उसकी थ्योरी ये थी कि मैं इन चीजों के बिना रह सकता हूँ। हम तो सतयुगी आत्मा, उससे भी ऊंची हाईएस्ट हैं। हम अपने मन बुद्धि को क्यों व्यर्थ में उलझाएंगे, नेगेटिव में, फालतू में, विस्तार में हम क्यों लेकर के जाएंगे। जैसे पुरानी माताएं जो आती हैं सेंटर पर, जो मम्मा बाबा के समय से हैं, कितनी पुरानी होंगी आप सोचिए, 1952-53 से ज्ञान में है। अभी एक माता ने शरीर छोड़ा 92 ईयर्स की एज में, और मुझे कहते थे बड़े भाई साहब और चक्रधारी दीदी कि इस माता के अनुभव क्लास में हर हफ्ते 10 दिन में सुनवाओ, सबको पता चले बाबा के भोग का क्या महत्व होता है, मधुबन कैसे जाना होता है, पहले मधुबन हम कैसे जाते थे। तो मैं भी सुनती थी उस माता से, राजकुमारी माता जी। तो मैं दो बातें उनकी आपको सुनाना चाहती हूँ, पुरानी माताओं की जो मम्मा बाबा के समय से ज्ञान में थे। पहली बात वो सुना रही होती थी क्लास में कि जब बाबा के घर आते हो तो भोग का दिन आ गया, क्योंकि 2 दिन भोग लगता है वहां, गुरुवार को और संडे को। तो जब सेंटर पर आते हो उस दिन बुधवार को भंडारी में डालो, नहीं आ पाते चलो गुरुवार को डाल दो, शुभ संकल्पों से कि बाबा, बेहद के बाबा, बेहद की सेवाओं में इसे स्वीकार करना। भोग लगाओगे भोगनाएं खत्म हो जाती हैं, सूली से कांटा हो जाती हैं। और भोग जरूर लगाओ, सभी अपने घर में भी जरूर लगाओ, सेंटर पर भी लगाओ और मधुबन में भी। बाबा ने उन दिनों में संदेश दिया था कि मधुबन आना अर्थात एक्स्ट्रा मार्क्स प्राप्त करना, भोग लगाना एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स लेना, घर में गीता पाठशाला खोलना एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स लेना। तो वो सब पॉइंट्स वो स्पष्ट कर रहे थे कि बाबा ने जब भोग की इतनी बड़ी बात कही है तो सभी को अपना यथा योग यथा शक्ति हर वीक भंडारी में जरूर डालना है। बाबा ने कहा था कि बच्चे बाप दादा को जो मदद करते हैं, बाप दादा उनके घर का ख्याल रखते हैं, जो बाप के घर का ख्याल रखते हैं। तब बाबा की मुरली चली थी उन दिनों में। कुछ समय के बाद मैंने देखा, 2000 सन की बात है, डायमंड हॉल बन गया था, तो बाबा के सामने वो खड़ी थी, मैं भी उनके साथ साथ खड़ी थी। तो एकदम बाबा के सामने जाकर ना एकदम हाथ को ऐसे करती है, जैसे नहीं मिलिट्री वाले करते हैं सैल्यूट बाबा को मार रहे। तो बाबा ने ऐसे किया, ब्लेसिंग का हाथ था बाबा का, और खड़ी रही वो 1 सेकेंड। फिर जब मैं उनके साथ इधर गेट से बाहर आई, मैंने कहा माता जी आप बाबा को ऐसे सैल्यूट कर रहे थे। कहती है मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है कि मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना, धर्मराज मुझे सैल्यूट मारे, कोई बीमारी आए, कोई हिसाब किताब हो 63 जन्मों के, इस जन्म के, इसी जन्म में चुक तो कर देना, दवाई खा लूंगी, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, इंजेक्शन लगवा लूंगी, ड्राई फ्रूट खा लूंगी। एक ही सांस में उन्होंने 10 बातें मुझे कही, लेकिन इसी जन्म में मेरे हिसाब पूरे कर देना बाबा, मैंने इतनी दृढ़ संकल्प किया हुआ है प्रभा, तू भी कर बाबा के आगे। क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ी थे, पुराने थे रतन, ऐसे मेरे को बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा, मैं भी स्टेज पर खड़ी हूँ, मैंने भी बाबा को बोल दिया कि हाँ बाबा, हम इतने अच्छे संकल्प बोल कर्म करेंगे कि धर्म राज भी हमको सैल्यूट मारे, और अच्छे कर्मों का फल सदा ही अच्छा ही होगा। इसी प्रकार अगली बात जो मैं पूछना चाहूंगी कि जब से कोरोना काल हुआ तो बहानेबाजी एक सबकी शुरू हो गई है। कौन सी बहानेबाजी? ऑनलाइन, कि हम घर में मुरली पढ़ लेंगे। तो मैं सुना रही थी कहीं पर कि आप सब घर में पढ़े लिखे हो, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हो? क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े आते हैं तो उनके घर भी जब हम लोग शिवरात्रि का प्रोग्राम रखते हैं, आपके बच्चे अच्छा स्कूल गए हुए हैं पर आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो फिर बच्चों को क्यों भेज रहे हो? क्या बोले वो? बच्चा संगठन में जाएगा, सीखेगा, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, अपनी गलती को महसूस करेगा, दूसरे बच्चों से सीखेगा। क्या घर में वो सीखेगा हमसे, पेरेंट्स से? तो यही बात हम सबको बता रहे होते हैं कि आप सेंटर रेगुलर जाइए, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। राखी भी आ रही है ना, तो राखी पर भी जब हम उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, वो कहते हैं जी प्लेट में वो पैसे रख देते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये नहीं हमको चाहिए। हम भगवान को क्या चाहिए? जो आपके मन की पॉकेट में है, खोटे सिक्के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो उसकी दरबार में नहीं चलेंगे। तो उनको समझ नहीं आता, कहते जी दोबारा से कहेंगे क्या बोला आपने? तो फिर हम दोबारा से बताते हैं, कहते ओके, तो ये विकार हमारे जीवन में आए कहां से? तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमें बाबा को जो सच्ची खर्ची, आगे त्योहार आ रहे हैं ना, अब हमें अपनी कोई ना कोई कमी, कमजोरी, व्यर्थ, नेगेटिविटी या ये बहानेबाजी कि दीदी मेरे मोबाइल पर भी तो मुरली है ना, दादी जी कहती थी 12 बार मुरली पढ़ो, जानकी दादी कहती थी चलो 12 नहीं तो 5 बार में आ जाओ, और अब तो सबके हाथ में, बैग में, मोबाइल में मुरली है। तो पूछो आज के फर्स्ट पेज की 5 पॉइंट्स क्या थी, अब तो आपके बैग में ही है। सेकंड पेज की 5 पॉइंट्स हम लोग सेंटर पे ऐसे रिवाइज करते हैं, मुरली एक पेज पढ़ लिया, 5 पॉइंट्स किसी को भी हम कह देंगे आप सुनाइए 5 पॉइंट्स, सार प्रश्न नहीं पूछ रहे हम, मटेरियल। सेकंड पेज देन थर्ड एंड लास्ट, मीठे मीठे तक। भगवान सिर्फ मीठे बच्चे नहीं कह रहा, वो मीठा बना रहा है। अब खीरा कड़वा आ गया, ककड़ी भी कड़वी, करेला भी कड़वा, गर्दन काटी उसकी, देखिए कैसे कर रहे होती है माताएं, बताएंगी ना। खीरा कड़वा आ गया, क्या करते हैं? गर्दन काटी, नमक लगाया, वो देखो झाग निकली, अब कहते खीरा ठीक हो गया। करेले को कहते इसको नमक लगा के सारी रात भिगोए रख, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बाबा सिर्फ मीठे बच्चे नहीं कह रहा, बाबा मीठा बना रहे, कड़वाहट निकाल रहे, खारापन निकाल रहे, जहर जहर निकाल रहा है वो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। इसलिए बाबा को रोज भोग लगाओ, रोज दूध का लगाया, ड्राई फ्रूट आया घर में, त्योहार आ रहे हैं ना अब, तो भाई बाबा की बर्तन है, बाबा की डिब्बी है, बाबा को पहले भोग लगाओ ना, ड्राई फ्रूट आया फिर हम खाएंगे बाद में, अभी फल आया है, अभी घी का कनस्तर आया है, पहले सेंटर तो भेजो, अभी नया फल शुरू हुआ है, पहले बाबा की ट्रे में तो लगाओ। ऐसे हमारे पास है, पाठ पक्के हो गए हैं उनको, पहले बाबा का घर, पहले बाबा को देना। एक बार मेरे को याद है, मैं ना वो बाबा का जल रखना भूल गई थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी सेंटर की, तो मैं ध्यान ही नहीं रहा कि बाबा का जल ही नहीं रखा, जल्दबाजी में कि लेबर आ गई है मैं जल्दी जल्दी देखूं। उस दिन सारा दिन पानी नहीं आया। उस दिन से मैंने दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, हर चीज, चाहे दूध आया है, चाहे आपका ड्राई फ्रूट आया है, फ्रूट आया है, रोटी सब्जी तो बाकी चीजें होती ही हैं, पर जो चीजें आ रही होती हैं, पहले बाबा को भोग लगाओ। और एक स्थान पर मैंने देखा पानी वहां ठीक नहीं था, शायद पंजाब की तरफ मैं कहीं गई हुई थी, उनको मैंने ये तरीका बोला, मैंने कहा कि आप बाबा के भोग के बर्तन में जल जरूर रखा करो, देखना पानी आने लग जाएगा, पानी साफ होके आएगा। प्रैक्टिकल हुआ ऐसा, तो जहां बाबा सर्वशक्तिवान बैठा है वहां असंभव भी सब संभव हो जाता है। अभी पीछे जब हम लोग ज्ञान सरोवर में थे तो वहाँ एक बात मैं सुना रही थी कि अगर ज्ञान सरोवर में सारे नॉन बीके रहना शुरू कर दें कलर्ड कपड़ों में, क्या वो वृत्ति से वायुमंडल पवित्र बनेगा? ईंटें भी वही है, सफेदी भी वही है, सीमेंट भी वही है, सब कुछ बिल्डिंग्स वैसी हैं, सिर्फ रहने वाले चेंज हो जाएं। तो सब ने कहा नहीं, वहां भट्टी थी, सब कहते नहीं बनेगा। तो हम जहां भी रहते हैं, चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, अपने फैक्ट्री में बैठा हूं मैं, लेकिन वृत्ति से मुझे वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। चाहे मैं कलर्ड कपड़ों में हूं, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार कैसे हैं? छोटी सी आत्मा पर हमारा सारा दिन ये फोकस रहना चाहिए कि बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मेरी वीडियो बना रहे हैं, बाबा ने पूरे चक्र में मुझे दिखानी है। इतना क्लियर हो गया, समझ आ गया इतना सबको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी समय की पुकार क्या चल रही है। समय, जैसे कहा कि मुट्ठी में हम रेत को नहीं पकड़ सकते ना, रेत फिसलती जाती है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, जुलाई भी निकल गया, अब ऐसी स्पीड से अगस्त भी निकल जाएगा, लेकिन हमारा पुण्य का खाता कभी क्षीण नहीं होना चाहिए। तीन बिंदियां, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। मेरे को याद है 2001 की बात है, जब हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब ने शरीर छोड़ा। ये फोटो उनका लगा हुआ है, मैं यहाँ आकर के बैठती हूँ, मैं देख रही होती हूँ। तो जब भाई साहब ने 2001 में शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद जब क्लास हो रही थी, तो शीलू दीदी ने कहा कि मैं खुद हैरान हूँ कि भाई साहब यहाँ 5 साल रहे मधुबन शरीर छोड़ने से पहले, और हर टर्न में नीचे डायमंड हॉल में बाबा से मिलने जाते थे। एक टर्न में बाबा की, आप देखो, एक सीजन में 10 टर्न तो कम से कम होती है, और 10 बार वो बाबा के सामने हाथ जोड़ करके, मुरली के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और पूछते थे, बाबा मेरा पुण्य का खाता जमा है? तो बाबा ऐसे करते थे। एक ही उनका हर टर्न में बाबा से ये पॉइंट चलता था, बाबा मेरा पुण्य का खाता जमा है? तो शीलू दीदी ओम शांति भवन में क्लास करा रही थी उन दिनों में, तो शीलू दीदी ने कहा कि मेरे मन में प्रश्न आया कि ऐसी आत्मा जो इस संस्था के सबसे बड़े भाई के रूप में इतने वर्ष सेवाएं की, जिसने 200 किताबें लिख डाली ब्रह्मा कुमारीज की, और जिसने इतनी सेंटर की टीचर्स को लायक बना के सेंटर खोल दिए, वो आत्मा पूछ रही है कि मेरा पुण्य का खाता जमा है? कहा मैं अंदर से इतनी हैरान होती थी कि हम सबका क्या होगा। ये तब से बात मेरे दिल पे लगी हुई है कि हाँ, हमें तीव्र पुरुषार्थी बनकर के रहना है कि बाबा ने मुरली में काम दिया, बाबा ने पहला शब्द बोला मीठे बच्चे, तो मैं कड़वा हूं, फीका, नमकीन, खट्टा, अपने से मैं चेक कर रही होती हूँ। हम सच में मीठे हैं, ठीक हैं बाबा के हिसाब से, बाबा की नजरों से हम अपने को मीठा समझते हैं। बाबा ने मुरली में काम दिया, सबको सम्मान दो, ओम शांति बोलो। तो अब चाहे हम कल शांति वन में हैं, चाहे हम परसों दिल्ली होंगे, लेकिन बाबा ने मुझे काम दिया है। ऐसे पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था, बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो कितनी आलीशान उनकी पूजा हो रही है। तो उस समय फिर हम क्लास में भी कहते हैं, भाई मंदिरों की सेवाएं भी करनी है सबको, दो दो का ग्रुप अभी जन्माष्टमी पर भी बना लेना, भक्त लोग अपने आप घरों से बाहर निकलेंगे, बिना खर्चे की सेवा है, सिर्फ झांकियां बनानी होती है सेंटर वालों को, मेहनत होती है, लेकिन भगत लोग अपने आप निकल रहे होते हैं, क्योंकि आश्रम के इधर मंदिर है गीता आश्रम, इधर है गोपाल मंदिर, सामने है अर्जुन रथ वाला मंदिर। तो कृष्ण जी के भक्तों की लाइन लगी होती है ना जन्माष्टमी के दिन। तो कहने का भाव ये है कि मुरली में आया मंदिरों की सेवा करनी है। ऐसे शिवरात्रि पर बच्चे बाप का झंडा घर घर लहराओ। शिवरात्रि पर स्पष्ट करो शिव शंकर अलग हैं, कृष्ण शिव अलग हैं। तो मैं क्लास में स्पष्ट कर रही होती हूँ कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना। हमने मुरली सुनी, बाबा मार्क्स देगा, लेकिन करने वाले को, प्रैक्टिकल वाले को, स्कूल लाइफ में याद रखो प्रैक्टिकल वाले को पूरे नंबर मिलते थे, उसमें कटिंग की मार्जिन ही नहीं होती थी। चाहे बाबा कोई भी सेवा कह रहा है, हम राखी पर मिनिस्ट्री को भी कवरेज करते हैं। कम से कम 25 जगह हम दो दो का ग्रुप बना के तीन तीन का रखते हैं कि बाबा ने कहा है ना उनको ऐसे बताओ, माउंट आबू के बारे में भी बताओ। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे तो फिर आगे का लेंगे। सार रूप में याद रखना कि बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, वो है तीव्र पुरुषार्थी। लास्ट सो फास्ट, ओम शांति।
जी।